नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूर्ण होने और सांस्कृतिक उत्सव तथा राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
जय श्री राम के जय घोष, शंख ध्वनि की गूंज और विश्व के विभिन्न कोनों से अयोध्या पहुंचे हजारों राम भक्तों की मौजूदगी के बीच शुभ विवाह पंचमी के दिन और अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया और बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। राम मंदिर पर लहराने वाला 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वज भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक है और एक दीप्तमान सूर्य की छवि के साथ कोविदार वृक्ष की छवि भी इस पर अंकित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे भगवान कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, ये 5 दिसंबर तक चलेगा। श्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आस्था और मानवता की रक्षा के लिए दी गई गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समाज को सदैव आलोकित करती रहेगी। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कहा है कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नई श्रम संहिताओं से बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने की 21 तारीख से लागू हुई नई श्रम संहिताओं के से श्रमबल में नियमित रोजगार की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राह के अरब प्रायद्वीप में फैलने और विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल स्थिति न होने से भारतीय विमानन कंपनियों ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी कई उड़ानें निलंबित कर दी हैं या उनके मार्ग में परिवर्तन किए हैं। इंडिगो ने 6 उड़ानें रद्द कर दी हैं और कन्नूर अबुधाबी सेवा को अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया है। आकाशा एयर ने कल और आज अबुधाबी, जेद्दा और कुवैत के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के बादलों के आज शाम तक भारत से चीन की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राख के बादलों से केवल विमानों के संचालन पर असर पड़ा है, मौसम या वायु गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
इथियोपिया से डेवलप हुआ वोल्केनिक आश भी धीरे धीरे वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, राजधानी नेपाल वगैरह होते हुए आज शाम तक इंडियन रीजन को पार कर जाएगा और चाइना की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर में जो हाइट है वही हाइट में देखने को मिल रहा है। ये जो वोल्केनिक आश है अभी इंडियन रीजन में सरफेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी वेदर और एयर क्वालिटी के ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका को अब कुल 426 रन की बढ़त हासिल हो गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 60 अंक गिरकर 84,840 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 25,952 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।